हवेली का गार्डन पूरी तरह तैयार था। हर चीज इतनी सलीके से सजी हुई थी कि जैसे किसी तस्वीर का हिस्सा हो। रंगों की कटोरियां एकदम सीधी लाइन में रखी थीं, जैसे किसी ने स्केल से नापकर उनकी दूरी तय की हो। गुलाब की पंखुड़ियों से भरे टब हल्की हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे और उनकी खुशबू पूरे वातावरण में घुलती जा रही थी। पानी से भरी चांदी की पिचकारियों पर धूप पड़ते ही हल्की चमक उठती, जैसे वे भी इस त्योहार का हिस्सा बनकर मुस्कुरा रही हों। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट था, उत्सव, रंग, सजावट, लेकिन इन सबके बीच रम्या धीरे धीरे चल रही थी और उसकी नज़र हर छोटी चीज पर टिकती जा रही थी। वो देख रही थी कि कहीं रंग कम तो नहीं, कहीं सजावट बिगड़ी तो नहीं, कहीं कोई खाली जगह तो नहीं रह गई। सब कुछ ठीक था, हर चीज अपनी जगह पर थी, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे इस सारी तैयारी का उससे कोई संबंध ही ना हो। उसी क्षण अचानक पीछे से एक हाथ आया और अगले ही पल किसी ने उसे दीवार के पीछे खींच लिया। उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत छूटने की कोशिश की और घबराकर बोली, छोड़ो मुझे। सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा रंगों से पूरी तरह सना हुआ था, गुलाब, अबीर, हरे और गुलाबी रंग की परतें। पहचानना मुश्किल था कि वो कौन है। उसकी पकड़ मजबूत थी और रम्या की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कौन हो तुम? उसने लगभग कांपती आवाज में पूछा। तभी उस व्यक्ति ने अपने हाथ से चेहरा पूछा, रंग थोड़ा हटे और चेहरा सामने आया, गगन। एक पल के लिए रम्या जैसे पत्थर बन गई, फिर अगले ही क्षण उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन तलखी से भरी हुई। तुम यहां क्यों आए हो? हमारा रिश्ता 3 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, जब झूठ बोलकर तुमने मामी जी को हवेली से बाहर करा दिया था। गगन की आंखें झुक गईं, उसकी आवाज में पछतावा था। रम्या, प्लीज मुझे माफ कर दो, कितनी बार कहूं, मेरी मजबूरी थी। रम्या हंसी, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आज तक मुझे नहीं बता पाए? गगन ने नजरें उठाई, उसकी आंखों में दर्द था लेकिन साथ में एक डर भी छिपा था। मैं नहीं बता सकता, उसने धीमे से कहा। ये सुनकर रम्या का गुस्सा और बढ़ गया। तो फिर माफी किस बात की? तुम्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं और उम्मीद रखते हो कि मैं सब भूल जाऊं? गगन एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज अब बेहद धीमी थी। आई लव यू आज भी। रम्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोने नहीं दिया। उसने उसकी पकड़ झटक दी और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। गगन वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, खाली, जैसे उससे कुछ छिन गया हो। लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ी। अदिति अकेली अंदर की ओर जा रही थी। गगन की आंखों में अचानक एक अलग सा भाव उभरा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अदिति चौंक गई। तुम? इससे पहले कि वो कुछ और कहती, गगन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ सख्त थी, गुस्से से भरी हुई। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। अदिति ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, लेकिन वो उसे भीड़ से दूर छांव की तरफ ले गया। उधर शहर के दूसरे छोर पर विश्वनाथ की कार ऑफिस के बाहर आकर रुकी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सीधे खड़े हो गए। दरवाजा खुला और वो बाहर उतरा। उसकी चाल धीमी, सीधी और नपीतुली थी, जैसे हर कदम पहले से तय हो। जूतों की आवाज टक 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 फर्श पर गूंजती हुई अंदर तक फैल रही थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की मुस्कुराकर बोली, हैप्पी होली सर। पीछे से 2-3 और आवाजें आईं, हैप्पी होली सर। विश्वनाथ रुक गया, पूरा ऑफिस एकदम चुप हो गया। उसने धीरे से उनकी तरफ देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। ये त्योहार जैसा कुछ नहीं होता, उसने कहा। सब सन रह गए। अगर काम जरूरी है तो गुड मॉर्निंग कहो, यहां कोई हैप्पी होली नहीं रहेगा, वरना हाथ धोने पड़ेंगे नौकरी से, अंडरस्टैंड? एक सेकंड की चुप्पी के बाद डरी हुई आवाजें आईं, गुड मॉर्निंग सर। वो आगे बढ़ गया। उसकी चाल अब भी वैसी ही थी, कंधे स्थिर, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक निर्णय चल रहा हो। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद हो गया। बाहर जैसे सबने एक साथ सांस छोड़ी। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, पहले सर सख्त थे, वॉचमैन बोला, अब तो क्रूर हो चुके हैं। किसी ने जोर दिया, पहले गुस्सा दिखता था, अब कुछ दिखता ही नहीं, बस ठंडापन। अंदर विश्वनाथ टेबल के सामने खड़ा था, पेट सीधी, ठुड्डी हल्की ऊपर, जैसे वो बैठता नहीं स्थित होता हो। उसकी चाल में अब भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ नियंत्रण था। हर कदम, हर रुकना, जैसे वो खुद को भी आदेश दे रहा हो कि ढीला मत पड़ो। बाहर होली थी, अंदर सिर्फ काम, और भीतर शायद कुछ सचमुच मर चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में पहले से ही भारी माहौल पसरा हुआ था। लंबी टेबल की चारों ओर बैठे लोग अपनी अपनी फाइलें खोले हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीधे विश्वनाथ की ओर देख सके। तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आया, बिना किसी अभिवादन के, बिना किसी औपचारिकता के।
बस उसकी चाल की आवाज कमरे में गूंज उठी। टक टक टक। वो अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं, बल्कि जैसे उस पर अधिकार जमा लिया हो। एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई गई। उसने उस पर बस एक नजर डाली और धीमी लेकिन धारदार आवाज में पूछा, ये क्या है? सामने बैठे व्यक्ति ने हकलाते हुए कहा, सर प्रोजेक्ट। लेकिन विश्वनाथ ने बीच में ही रोक दिया, मैंने ये पूछा कि ये क्या है। कमरे में खामोशी जम गई। उसने फाइल बंद की और धीरे से टेबल पर रख दी। अगर ये आपका बेस्ट है, उसने हल्का सा सिर टेढ़ा किया, तो मुझे आपका वर्स्ट देखने में दिलचस्पी नहीं है, एक डायरेक्टर ने हिम्मत जुटा कर कहा। सर हमने टाइम टाइम, इस बार उसकी आंखें सीधी उठी, तेज और ठंडी। टाइम वो लेते हैं जो नतीजे देते हैं, बाकी लोग बहाने लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोला। उसने एक एक चेहरे की तरफ देखा, जैसे हर किसी को याद रख रहा हो। फिर शांत स्वर में कहा, रीवर्क 48 घंटे, फेल हुए तो आप सबकी कुर्सियां किसी और के लिए खाली हो जाएंगी। मीटिंग यहीं खत्म हो गई, बिना किसी औपचारिक शब्द के, बिना धन्यवाद के। वो उठा और बाहर निकल गया। अपने कैबिन में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। कमरा शांत था, नियंत्रित, बिल्कुल उसकी तरह। वो मेज के पास गया, ड्रॉर खोली और अंदर से एक तस्वीर निकाली, उसकी और श्यामली की, पुरानी तस्वीर जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं, ठंडापन था। उसने धीमे से कहा, मुझे छोड़कर जाने का फैसला तुम्हारा था, मेरे बारे में सोचा नहीं, तो ठीक है। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारे पर कस गईं, आंखों में सख्ती उतर आई। तुम मुझे नहीं जानती हो, वो हल्का झुका, तस्वीर को देखते हुए बोला, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। माई डियर वाइफ, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगले ही पल उसने तस्वीर को बीच से फाड़ दिया, अपना हिस्सा अलग, श्यामली का अलग। उसने अपना हिस्सा मेज पर रख दिया और श्यामली वाले टुकड़े को उठाया, लाइटर निकाला, आग जलाई। तस्वीर का कोना सुलगा और धीरे धीरे श्यामली का चेहरा काला पड़ने लगा। वो उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा, जब तक कि वो पूरी तरह राख ना हो गई। फिर उसने उस जली हुई राख को डस्टबिन में गिरा दिया। कमरे में हल्की जलने की गंध फैल गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही ठंडा रौब बना रहा, जैसे ये अंत नहीं बल्कि किसी शुरुआत की घोषणा हो।